India's great need.
भारत की बड़ी आवश्यकता.
Holy men.
पवित्र लोग.
With right doctrine.
सही शिक्षा के साथ.
Who can clearly interpret the word of God.
जो सफाई से परमेश्वर के वचन का व्याख्या कर सकें.
Who can plainly preach the word of God.
और जो सफाई के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकें.
So the Indian people can understand the truth of God.
ताकि भारतीय लोग परमेश्वर के वचन के सत्य को समझ सकें.
And we can establish and build the church of God.
ताकि हम परमेश्वर की कलीसिया को स्थापित कर सकें, उसका निर्माण कर सकें.
They are all related and necessary.
ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं और आवश्यक हैं.
There's much false teaching or weak teaching in India today.
भारत में बहुत सारी गलत शिक्षा और कमजोर शिक्षा पाई जाती है.
What is its source?
और उसका जड़ क्या है?
Man's inability to understand and properly interpret the word of God.
मनुष्यों की असक्षमता परमेश्वर के वचन को सही तरह से समझना, उसकी व्याख्या करना.
Wrong interpretation leads to wrong doctrine.
गलत व्याख्या, गलत अर्थ, गलत शिक्षा की ओर लेकर के जाता है.
Wrong doctrine leads to wrong preaching.
और गलत शिक्षा, गलत सिद्धांत, गलत प्रचार की ओर लेकर के जाता है.
Preaching leads to wrong experience.
और गलत प्रचार, गलत अनुभव की ओर लेकर के जाते हैं.
Wrong experience leads to weak churches.
और गलत अनुभव कमजोर कलीसियाओं की ओर लेकर जाते हैं.
Where does it begin?
और कहां आरंभ हुआ ये सब?
What is its source?
इसका सोत्र क्या है?
What is its root?
इसका जड़ क्या है?
Wrong interpretation of the word of God.
परमेश्वर के वचन का गलत व्याख्या.
That's why Paul said you must study to show yourself approved unto God.
इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हें अपने आप को इस तरह से अध्ययन करना और परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य दिखाई देना है.
Now we've been discussing how to apply principles of interpretation to the word of God.
और हमको परमेश्वर के वचन का जो अध्ययन व्याख्या करना है, उसके सिद्धांतों को सही तरीके से लागू करना है.
And we've been looking at several examples.
और हम कई उदाहरणों को देख रहे हैं.
Trying to show you how to use biblical principles to interpret and preach verses properly.
और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे व्याख्या शास्त्र के सिद्धांतों को उपयोग करना और सही तरीके से खंडों को, इन पदों को, उदाहरण तौर पर इन पदों को कैसे लागूकरण करना और कैसे प्रचार करना सही तरीके से.
We've been looking at passages specifically in the book of Acts.
और विशेष तौर पर हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक में खंडों को देख रहे हैं.
And how do we interpret these passages in the book of Acts?
और कैसे हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में इन खंडों को की व्याख्या करेंगे.
What is simply described and temporary for that time.
और हमको इस बात में भेद करना सीखना है कि कौन से खंड हैं जो साधारण तौर पे उस समय की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं.
What is prescribed and commanded for all time.
और फिर हमको ये देखना है कौन से ऐसे खंड हैं जो निर्देशात्मक हैं और निर्देश दे रहे हैं और हम पे लागू होते हैं कलीसिया पे, हर एक समय की कलीसिया के ऊपर.
And we determined to use several principles.
और हमने निर्धारित किया था कि हम कई सिद्धांतों का उपयोग करेंगे, कुछ सिद्धांतों का, ताकि हम ऐतिहासिक और वहाँ की तुरंत आसपास के इतिहास संदर्भ को समझ सकें. और फिर हमको ये सिद्धांत लागू करना है कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर के वचन का की व्याख्या करता है.
And if there is some practice in the early apostolic church,
और अगर आरंभिक प्रेरितों की कलीसिया में उनका कोई कार्य होता है, कोई करने का तरीका होता है,
clearly confirmed and further explained by the rest of the New Testament.
और जो कार्य आरंभिक कलीसिया के लोग करते थे और उसको बाद में फिर से समझाया गया है और फिर से उसको पुख्ता किया गया है नए नियम में,
certainly something that can be applicable to the church today.
तो तभी अगर कोई चीज प्रेरितों की कलीसिया ने किया और फिर बाद में अन्य नए नियम में हम उसको देखते हैं, उसको दोबारा बताया गया, दोहराया गया, समझाया गया, पुख्ता किया गया, तो वो भी बातें हैं जिनको हमें निश्चित तौर से अपने कलीसिया में, अपने जीवन में लागू करना चाहिए, करना चाहिए. और आप में से कुछ लोगों, किसी ने प्रश्न पूछा आश्चर्य कर्मों के संबंध में और चंगाइयों के संबंध में, और अन्य भाषाओं के संबंध में, और भविष्यवाणियों के संबंध में, दुष्ट आत्माओं को निकालने के संबंध में, हमारे प्रभु के जीवन में और सेवा में ये बातें स्पष्ट थी, और प्रेरितों के जीवन में और कार्यों में ये बातें स्पष्ट थी.
So we're taking a brief break and we're trying to discuss that particular issue.
और हम एक जो हम शिक्षा ले रहे थे उससे हट करके हम इस विषय के ऊपर बात करने का प्रयास कर रहे हैं.
And we're trying to answer this question.
और हम इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं.
Is it possible that we should pray for and expect these extraordinary miracles, signs?
और क्या ये संभव है क्या हम लोग को आज के दिन भी इस तरह के अलौकिक कार्यों को और चिन्हों को आशा करना चाहिए और अपने जीवन में देखना चाहिए क्या हमें इस तरह आशा करना चाहिए और इसको बड़ी जल्दी से हम देख रहे हैं सर्वेक्षण कर रहे हैं देख रहे हैं इसको लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान में बड़ी आशा क्या जरूरी है क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हैं जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि उनको परमेश्वर ने वरदान दिया है चंगाई करने का आश्रय कर्म करने का और दुष्टात्माओं को निकालने का
money,
और अगर आप उनको काफी पैसा देंगे तो वो लोग भी आपके लिए कर देंगे ये सारे कार्य
But is that the way these gifts and miracles were performed in the New Testament?
लेकिन क्या नए नियम में इस तरह से आश्चर्य कर्मों को किया गया था पैसा लेकर के?
That is the reality of physical healing.
और सबसे पहले हमने देखा शारीरिक चंगाई की वास्तविकता.
And the life of Christ, and the life of the apostles, and the life of the early church.
मसीह के जीवन में और मसीह की सेवकाई में और आरंभिक कलीसिया के जीवन में.
Number two, we talked about the basic nature of these physical healings.
और फिर दूसरी बात हमने बात किया था कि ये जो शारीरिक चंगाइयां हैं उनका आधारभूत प्रकृति क्या है किस तरह का स्वभाव किस तरह की होती हैं ये
They were sudden and immediate.
हमने ये बताया था कि ये जो आश्चर्य क्रम थे चंगाई था वो एकदम से होते तुरंत होते थे
Supernatural and powerful.
ये अलौकिक होते थे और सामर्थ्य से भरे होते थे
And they were obvious and evident to all.
और वो स्पष्ट होते थे और सबके सामने साबित होते थे दिखाई देते थे स्पष्टता के साथ क्या हो रहा है
obvious, immediate physical change.
एक स्पष्ट प्रत्यक्ष सामने दिखने वाला साफ साफ शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता था और साथ ही साथ ना सिर्फ हमने देखा कि इसकी प्रवृत्ति क्या है इसका प्रकार क्या है किस तरह के होते थे आशय का हमने ये कहा था इनका उद्देश्य क्या था
It was to testify to Jesus Christ and the coming of his kingdom.
हमने बताया कि इन आशय कर्मों का उद्देश्य मनता ये था कि ये यीशु मसीह के साथ आने वाले राज्य को कि ये लोग गवाही दे रहे थे ये सामर्थ्य के साथ और अधिकार के साथ हुए थे घटनाएं और यीशु मसीह ने कहा अगर मैं परमेश्वर की उंगली के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालता तो तुम ये जान लोगे कि परमेश्वर का राज्य अब आ पहुंचा है और यीशु मसीह इसलिए आश्रय कर्म करते थे क्योंकि इनके आश्रय कर्म इस बात को पुख्ता करते थे कि परमेश्वर का राज इस संसार में प्रकट हो गया है आ गया है आ पहुंचा है जो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा था वो अब इस बलवंत मनुष्य के घर में आ गया है और उसने इस बलवंत मनुष्य को बांध दिया और बंदी बना दिया उसी के घर में
Number two, it is also a testimony to the compassion and the mercy of God.
और ना सिर्फ ये इस बात की आश्चर्य करने वाली बात की गवाही दे रहे थे कि यीशु मसीह के आने के द्वारा परमेश्वर के राज्य का उद्घाटन हो गया लेकिन वो यीशु मसीह के दया और करुणा की भी गवाही देते थे कि वो करुणा करने वाला परमेश्वर है
Again, his public ministry,
जब यीशु मसीह ने अपने सार्वजनिक सेवा का आरंभ किया और लूका के चौथे अध्याय में उसने कुछ आरंभिक प्रचार संदेश दिए
Was the evidence and sign that he was the promised and prophesied Messiah?
और क्या चिन्ह है या क्या प्रतीक क्या सबूत है कि वो वास्तव में मसीहा है परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा किया हुआ?
He entered into the synagogue at Nazareth, chapter 4, verse 16.
और चौथा अध्याय उसे 16 अध्याय 16 पद में लूका से चौथा अध्याय 16 पद में वो नाजरत के सिनेगॉग आराधनालय में गया.
It was the custom to invite the traveling preacher to stand up and to read and to expound the scriptures.
और ये उस वहाँ की रीति थी परंपरा थी कि जो प्रचार करने वाले प्रचारक होते थे वो आते थे खड़े होते थे वचन को पढ़ते थे और फिर उसके बाद समझाते थे पवित्र शास्त्र को.
Verse 17, he opened up the prophet Isaiah, and he opened the book and found the place where it was written.
और फिर उसने भविष्यवक्ता यशायाह को खोला और उसने दिखाया वहाँ पे जो बातें उसके बारे में कही गई थी.
And he said, the spirit of the Lord is upon me.
और वहाँ पे लूका के 8:4 पद उसके 18 पद में लिखा है यीशु मसीह ने कहा प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है.
And he has anointed me to preach the gospel to the poor.
और उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है.
He sent me to proclaim release to the captive.
और उसने मुझे भेजा है कि मैं छुटकारों को बंदों को छुटकारे का संदेश सुनाऊं.
To recover the sight of the blind.
और अंधों को मैं दृष्टि दूं.
To set free those who are oppressed.
और वे जो दलित हैं उनको मैं छुड़ाऊं.
To proclaim the favorable year of the Lord.
और परमेश्वर के अनुग्रह के समय की मैं उद्घोषणा करूं.
The favorable year is here.
और जो प्रभु के अनुग्रह का समय वो आ गया है.
The anointed Messiah has come.
जो प्रतिज्ञा किया गया मसीह है वो आ गया है अब.
The kingdom of God has entered into this world.
परमेश्वर का राज्य इस संसार में प्रवेश कर चुका है.
He has anointed me to preach the gospel to the poor.
और उसने मुझे इसलिए अभिषेक किया कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को गरीबों को बांटूं.
And to proclaim both physical and spiritual release from the captives.
और जो बंधुआ हैं उनको मैं शारीरिक तथा आत्मिक छुटकारे की घोषणा करवाऊं.
And to give both physical and spiritual sight to the blind.
और फिर मैं उनको शारीरिक और आत्मिक अंधेपन से मुक्ति देकर के उनको दृष्टि दूं.
And to free those that are oppressed by the devil and by sin.
और फिर वे लोग जो दुष्ट आत्मा के द्वारा ग्रसित हैं उनसे मैं उनको स्वतंत्र करूं.
So these miracles were to confirm Christ as the anointed Messiah and to introduce the coming of the kingdom of God.
और तो ये एक बात स्पष्ट है कि आश्चर्यकर्म यीशु मसीह के द्वारा इसलिए किए गए थे इस बात को पुख्ता करने के लिए साबित करने के लिए पक्का करने के लिए यीशु मसीह प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है और उसके आने के साथ ही परमेश्वर के राज के आने की उद्घोषणा घोषणा या आरंभ हो गया है.
And it was also an expression of the mercy, love, and kindness to of God to the needy.
और उसके साथ ही साथ आश्चर्यकर्मों के द्वारा परमेश्वर दिखा रहे थे कि वे गरीबों और आवश्यकतामंद जरूरतमंद लोगों से प्रेम करते स्नेह करते दया करते करुणा करते उनके ऊपर.
So in the book of Acts, these miracles were to prepare men's hearts and minds to receive the gospel.
और हमने प्रेरितों काम में देखा था कि इस तरह के आश्चर्यकर्मों का उद्देश्य ये था कि लोगों के हृदय तैयार किए जाएं सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए प्राप्त करने के लिए सुनने के लिए.
Now, the physical healing touched their body, but it did not save their soul.
और हमने आपको पहले भी बताया कि शारीरिक चंगाई लोगों के शरीर को अवश्य छूते थे लेकिन उनको आत्मिक चंगाई अवश्य जरूरी नहीं कि मिलता था.
So, accompanying the physical healing, there must have been the proclamation of the word of God.
इसलिए शारीरिक चंगाई के साथ साथ ये आवश्यक था कि परमेश्वर के वचन की भी उद्घोषणा हो सुसमाचार बताया जाए लोगों को. और आपको मालूम है कि विश्वास चंगाई से नहीं आता है लेकिन विश्वास सुनने के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा ही उत्पन्न होता है.
God used the healings and the miracles and the casting out of demons to prepare the way for the coming of the word of God.
परमेश्वर ने चंगाई को और दुष्ट आत्माओं को निकाले जाने को और आश्चर्य कर्मों को उपयोग किया लोगों के मनों को तैयार करने के लिए और परमेश्वर के वचन की उद्घोषणा के लिए सुसमाचार लोगों तक पहुंचने के लिए उनको तैयार करने के लिए. तो प्रश्न मेरा यह है आपसे और क्या परमेश्वर के वचन में कहीं और ऐसे खंड हैं जो इन दोनों तथ्यों को हमारे सामने उपस्थित कर दे प्रकट कर दे परमेश्वर के सुसमाचार को पुख्ता करने के लिए और वो काम अभी भी हो रहा है आश्चर्यकर्मों का काम.
Because especially in America,
क्योंकि विशेष तौर से अमेरिका में
their idea about the extraordinary gifts of healings, miracles, tongues.
कई लोग हैं जिनके विचार आश्चर्यकर्मों को लेकर के जो अलौकिक परमेश्वर के काम है चंगाई को लेकर के या अन्य भाषाओं को लेकर के.
We're going to answer that question.
अगर हम उन प्रश्नों को उत्तर देंगे
we have to answer three questions.
हमें तीन प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा.
Number one,
पहली बात
who were the recipients of these gifts?
कौन थे वे लोग जिनको ये वरदान प्राप्त हुए.
Number two,
दूसरी बात
what was the purpose of these gifts?
और इन उद्देश्यों का इन वरदानों का उद्देश्य क्या था.
Number three,
तीसरी बात
what was the or is the duration of these gifts?
और ये कितने समय के लिए ये वरदान लोगों के पास रहे हैं.
Who received them?
किसने प्राप्त किया इनको.
For what purpose?
किस उद्देश्य से.
And for what duration?
और कितने समय के लिए.
Some say this.
कुछ लोग ये कहते हैं.
The apostles received these gifts.
प्रेरितों ने इन वरदानों को प्राप्त किया.
For what purpose?
किस उद्देश्य के लिए?
To accompany and confirm their preaching of the gospel.
उनके सुसमाचार के प्रचार के साथ साथ चलने के लिए और उसको पुख्ता करने के लिए सही साबित करने के लिए.
Paul says in 2 Corinthians that signs of a true apostle were performed among you.
क्योंकि दूसरे ग्रंथों में पौलुस उन लोग अपने पाठकों से कहता है कि तुम्हारे बीच में सच्चे प्रेरितों के नाईक आश्चर्यकर्म किए गए.
And like the Hebrews says in chapter 1, it was first heard and spoken to the prophets and confirmed to us by the apostles and preachers with signs that accompanied them.
और प्रेरितों इब्रानियों की पुस्तक को भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी पहले अध्याय में यही लिखा है कि ना सिर्फ भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमको जो संदेश प्राप्त हुआ लेकिन प्रेरितों के द्वारा भी जो संदेश प्राप्त हुआ और उसको पुख्ता किया गया पक्का किया गया आश्चर्यकर्मों और चिन्हों के द्वारा.
So according to one view,
और इसलिए एक विचारधारा के अनुसार
recipients of these gifts were limited to the apostles.
और इन आश्चर्यकर्मों के इन वरदानों के प्राप्त करने वाले सिर्फ प्रेरित लोग थे उन्हीं तक सीमित है ये चिन्ह.
According to this view, the purpose was to confirm the apostolic preaching and message.
और इस विचारधारा के अनुसार इन वरदानों का उद्देश्य केवल प्रेरितों के शिक्षा सेवा को साक्षी ठहराने के लिए सही ठहराने के लिए पुख्ता करने के था.
And according to this view, when the apostles died and the word of God came and was confirmed, there was no further need for these miraculous signs.
और इन लोगों के अनुसार जब लोगों की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अब इस तरह के चंगाई इस तरह के आश्चर्यकर्मों की या चिन्हों की आवश्यकता नहीं है.
So if you limit these extraordinary gifts to the apostles,
और अगर आप इन लौकिक अद्भुत आश्चर्य कर्मों को केवल प्रेरितों से रोक कर रख देंगे
and you say their purpose was solely to confirm the apostolic message,
और अगर आप कहते हैं कि उनका उद्देश्य केवल सिर्फ प्रेरितों के संदेश को सही ठहराने के लिए था
these apostles and their office have all died and are gone,
और तो फिर इन प्रेरित और इनके कार्य कार्य और उनके साथ में उनकी जिम्मेदारी उनका अब खत्म हो गया है समाप्त हो गया
and their authority is deposited in the scripture,
और उनके शब्द उनके शिक्षाएं आप परमेश्वर के वचन में हमें पाए जाते हैं.
Therefore,
इसलिए
what is the conclusion of that view?
तो उस जो विचारधारा उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा फिर. हाँ जी there are no more
miraculous extraordinary signs.
अब इस समय कोई भी इस तरह के अद्भुत अलौकिक चिन्ह या आश्चर्यकर्म नहीं है.
There are no longer the distribution of these extraordinary gifts.
और ये अद्भुत अलौकिक ये जो वरदान है अब इनका बंटवारा नहीं होता है कलीसिया में अभी.
Thinking biblically,
और लेकिन वचन के अनुसार से देखते हुए
think about those three points.
उन तीन प्रश्नों के बारे में सोचिए आप.
Let me ask you a question.
मैं पूछता हूँ आपसे ये बात.
Number one,
पहली बात,
were the apostles the sole recipients of these gifts?
क्या केवल प्रेरित लोग ही इन वरदानों के प्राप्त करने वाले थे? क्या केवल प्रेरितों को ही ये वरदान मिला था? ये सरल प्रश्न है. केवल प्रेरितों को ही क्या ये वरदान मिले थे?
उस समय मिला था.
केवल प्रेरितों को. केवल प्रेरितों को. केवल प्रेरितों को.
मरकुस के अनुसार जो विश्वास करेंगे उनमें
फलाफल अच्छे होंगे.
Listen carefully when you answer a question.
ध्यान से सुनिए. जब आप कोई प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका उत्तर देना चाहिए. क्या केवल प्रेरित लोग ही इन वरदानों के प्राप्तकर्ता थे? आप कहते नहीं. तो आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं? He's saying in Mark chapter 16. All the believers.
Where does it say that?
कहाँ लिखा है ये बात? मरकुस के 18 अध्याय में. अच्छा 16 अध्याय. मार्क 16:16. फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 12. इफिजियंस 4.
Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
Usually any practice or any teaching in the book of the Gospels or Acts, if it is permanent and abiding, will be further confirmed and explained by the rest of Scripture.
और हमने आपको बार बार बताया अगर कोई कार्य जो हमको प्रेरितों के दिखाई देते हैं और वो हमेशा के लिए हैं और वो हमारे पर लागू होते हैं तो आगे चल के परमेश्वर के वचन में वो दोबारा दिखाई देने चाहिए और वो पुख्ता होंगे सही ठहराए जाएंगे.
You understand what we're saying?
क्या आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं?
That's a basic principle of interpreting historical literature.
और ऐतिहासिक साहित्य का अनुवाद करने का बड़ा ही आधारभूत सिद्धांत है ये तरीका है ये.
According to 1 Corinthians chapter 12,
पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय के अनुसार और 14 पद से आगे लेकर के और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 14 पद से आगे पौलुस क्या कहता है कि कौन है इन वरदानों के प्राप्त करने वाले, कौन है इन वरदानों को प्राप्त करने वाले. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 14 पद से आगे कौन है इन वरदानों को प्राप्त करने वाले, क्या केवल प्रेरित लोग हैं? संपूर्ण देह है.
Ordinary believers.
आम विश्वासी लोग.
So at least in that passage, Paul called that the extraordinary
gift of
prophecy and tongues and various interpretations and words of knowledge and revelation were not limited to the apostles.
12 अध्याय उसके 7 पद से लेकर के 11 पद में विशेषों से वरदानों के बारे में बात किया है. 6-7 पद से 4 पद से आगे 12-4 से 11 तक और फिर उसके बाद 12 पद से आगे समझाया गया 14 पद समझाया गया मतलब क्या उसका.
According to 1 Corinthians 12, is there another purpose for some of these gifts?
और पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय के अनुसार इन वरदानों का कोई उद्देश्य है कि नहीं है, क्या उद्देश्य क्या है?
ताकि कलीसिया में मिल रहे
सामंजस्य. So that there be unity in the church. For the growth of the church.
For the edification and growth of the church.
कलीसिया की वृद्धि और कलीसिया के उन्नति के लिए, उत्साह के लिए, वृद्धि के लिए.
Then at least in the first century.
और पौलुस यहाँ पे स्पष्ट दिखा देते कि कम से कम पहले शताब्दी में
people other than the apostles received some of these extraordinary gifts.
प्रेरितों के अलावा भी कई लोग, कुछ लोगों ने इन अद्भुत वरदानों को प्राप्त किया है.
You don't see as strong an emphasis in the epistles on gifts of healings and miracles.
और यद्यपि आप जब चिट्ठियों में हम आते हैं, पत्रियों में आते हैं, तो बहुत ज्यादा जोर आप नहीं देखते हैं आश्चर्य कर्मों को लेकर के और चंगाइयों को लेकर के.
But in 1 Corinthians chapter 12,
लेकिन पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय में
Paul's conclusion, verse 27 and following,
पौलुस का निष्कर्ष 27 पद से आगे में है.
The Corinthians were occupied with outward supernatural sensational gifts.
समझते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग बाहरी दिखने वाले बड़े ही प्रभावशाली आश्चर्य कर्मों से उसके पीछे दीवाने थे, पागल हो रहे थे.
And they thought spiritual gifts meant spiritual maturity.
और वो लोग ये सोचते थे आत्मिक वरदानों का मतलब ये होता है जिसके पास वरदान है वो आत्मिक तौर से परिपक्व है, वो ऐसा समझते थे. तो अगर कोई व्यक्ति बढ़िया बोल सकता है और अगर उसके पास बढ़िया ज्ञान है, अगर उसके बढ़िया वरदान है, अगर उसके बढ़िया विश्वास है, अगर वो आश्चर्य कर्म कर सकता है और अगर उसने बड़े बड़े बलिदान त्याग किए हैं तो लोग ये सोचते कि वो व्यक्ति अवश्य है आत्मिक व्यक्ति होगा. और पौलुस यहाँ पे प्रयास कर रहा है उनकी गलत भावना धारणाओं को सही करने की, ठहराने की. और वो पौलुस कह रहा है कि तुम्हारी आत्मिकता को लेकर के तुम्हारी धारणा गलत है, तुम्हारा स्तर गलत है, मापदंड गलत है. और आत्मिक परिपक्वता आत्मिक वरदानों पर निर्भर नहीं होती है, आत्मिक परिपक्वता तो आत्मिक चरित्र से पाया जाता, समझा जाता कैसा है आत्मिक परिपक्वता. और 28 पद में यहाँ पे कहता है और वो कहता है परमेश्वर ने कलीसिया में सबसे पहले प्रेरित, फिर नबी, नहीं, फिर शिक्षक, सामर्थ करने वाले, चंगा करने वाले, चंगा करने वाले, परोपकारी, प्रबंधक, अन्य भाषा बोलने वाले, और परमेश्वर की कलीसिया के संदर्भ में अलग अलग दान है लोगों के पास.
That starts with the foundation layers.
और जो सबसे पहले शुरुआत होता है बुनियाद बनाने वालों से.
Up with the edification of the church.
और फिर उसके बाद कलीसिया की उन्नति और समृद्धि और वृद्धि वालों से होता है.
But Paul makes it very plain.
लेकिन पॉल इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है.
Not everyone has these gifts.
कि सबके पास ये सारे वरदान नहीं है.
The Holy Spirit distributes them sovereignly as He will.
पवित्र आत्मा जिसको जैसा चाहता है अपनी मर्जी के अनुसार अलग अलग वरदान देता है.
Peter says, as each one has received a special gift, let him use it in the service of the church.
और पत्रस कहता है कि जैसे तुम में से प्रत्येक ने वरदान पाए हैं, वो अपने वरदानों को कलीसिया के सेवा के लिए उपयोग करें.
And then he introduces this famous chapter 13.
और फिर उसी के बाद पौलुस यहाँ पे 13 अध्याय को ला देता है.
What's the most important thing?
और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पौलुस कहता है, तुम्हारा चरित्र होना चाहिए और उस चरित्र में विशेष तौर से तुम्हारे जीवन में प्रेम होना चाहिए. पहला पद, और वो कहता है कि अगर मेरे पास आत्मिक वरदान हो, अगर मैं भाषाएं बोलूं लेकिन प्रेम न रखूं, तो ये बर्बाद फालतू की बात है. और वो कहता है दूसरे पद के अनुसार, अगर मेरे पास सारा ज्ञान हो, और कहता है मेरे पास बड़ा विश्वास हो कि पहाड़ भी हटा सकूं, लेकिन अगर प्रेम नहीं तो कोई भी फायदा नहीं है. तीसरा पद, अगर मैं बड़ा बड़ा बलिदान त्याग करूं, अगर मैं अपना सब कुछ गरीबों खिलाने के लिए दे दूं, और मैं अपना शरीर जलाने के लिए दे दूं, लेकिन अगर प्रेम नहीं तो कोई भी फायदा नहीं.
स्पिरिचुअल गिफ्ट,
आत्मिक वरदान,
स्पिरिचुअल नॉलेज,
आत्मिक ज्ञान,
ग्रेट फेथ,
बड़ा विश्वास,
ग्रेट सैक्रिफाइस,
बड़ा त्याग,
is useless unless it is motivated by and characterized by love.
ये सारी चीजें फालतू की हैं, बेकार हैं, कोई फायदा नहीं है अगर ये प्रेम से वास्ता नहीं रखती और चरित्र में नहीं पाई जाती हमारे. नवा पद,
we know in part and we prophesy in part.
और कहते हैं अभी तो हम थोड़ा सा जानते हैं इसलिए अधूरा जानते हैं, इसलिए हम नबूवतें भी अधूरा करते हैं.
But when the perfect comes, the partial will be done away with.
लेकिन जब सिद्ध आ जाएगा तो अधूरापन चला जाएगा. जब मैं बालक था तो बालक के समान सोचता था, बालक के समान बोलता था, बालक के समान समझता था.
But I did away when I became a man with childish things.
और जब मैं सयान हो गया तो मैंने बालकपन की बातें छोड़ दी हैं.
Verse 12. Now we see in the mirror face to face.
और बार पद में कह रहे अब हम दर्पण में धुंधला सा देखते हैं.
I know in part, but then I shall fully know just as I have been fully known.
अभी हम अधूरा देखते हैं लेकिन एक समय आएगा जब हम पूर्ण रूप से जान जाएंगे.
Let me ask you to interpret this verse.
और मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे बताइए इस पद में क्या हो रहा है.
Verse 10.
दसवां पद.
When the perfect comes, the partial will be done away with.
जब सिद्ध आएगा तो अधूरापन मिट जाएगा.
This is a good translation. Mm-hmm. What does Paul mean by the perfect coming?
और पौलुस का यहाँ से क्या मतलब, सर्व सिद्ध या सिद्ध आएगा, किस चीज की बात कर रहा है, कौन आएगा?
Two possible interpretations.
दो संभावित अनुवाद हैं, व्याख्या है.
What are they?
कौन है वो?
Number one.
पहली बात.
He's talking about the coming and the completion of the word of God.
तो हो सकता है पौलुस यहाँ पे बात कर रहा है परमेश्वर के वचन के परिपूर्ण होने की, भरने की, पूरे होने की बात कर रहा है.
When the word of God fully comes and is fully complete, then we'll not have need for prophecy.
जब परमेश्वर का वचन जब आ जाएगा पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, तो भविष्यवाणी की जरूरत नहीं होगी. परमेश्वर का वचन मतलब बाइबल जब पूरी हो जाएगी तो.
Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
When you interpret a verse, you have to ask these two questions.
जब कोई भी पद का आप अनुवाद करते हो तो आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए.
What did the author mean?
वो जो लेखक है, लेखक की मंशा क्या थी, उद्देश्य क्या था, उसका क्या कहने का मतलब था, वो क्या कह रहा था. और दूसरी बात,
What would the people understand?
वहां पे उस समय जो लोग सुन रहे थे वो लोग क्या समझे होंगे जब सुन रहे होंगे वो लोग.
The second interpretation.
और एक दूसरा अनुवाद यह है.
The perfect means the final perfect state.
और
new heavens and the new earth.
और यहाँ पे सिद्ध पूर्ण सिद्धता की बात हो रही है. अंत में जो परिपक्व सिद्ध परिस्थिति होगी, मतलब नया स्वर्ग और नई पृथ्वी.
Now listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
Some say this.
कुछ लोग ये कहते हैं.
Well, both are true.
दोनों सही हैं.
Is that possible?
क्या ये संभव भाई खासतौर से जो सो रहे हैं?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात का.
In interpreting the word of God.
परमेश्वर के वचन का जब हम लोग व्याख्या करते तब.
Our goal is to determine what was in Paul's mind when he wrote those words.
हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए ये पहचानने के लिए कि उस समय जब लेखक और यहाँ पे पॉलुस लिख रहा था उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा उसकी मन से क्या थी उसकी इच्छा क्या थी आशा क्या था.
Not what was in our mind when we read the words.
ये नहीं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं हम क्या सोचते उसके बारे में. ये नहीं कि हम पौलुस के मन में मुंह में क्या डाल रहे हैं जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं कि उसने क्या सोचा होगा. लेकिन हम लोग को ये कहना है कि परमेश्वर का वचन इस स्थल में इस खंड में क्या कह रहा है.
What was in Paul's mind?
पौलुस के दिमाग में मस्तिष्क में मन में उस समय क्या चल रहा था.
Paul had one meaning.
और पौलुस के दिमाग में एक ही मकसद था. ध्यान दें इस बात को.
Has one basic meaning, but it may have multiple applications.
इस पद का एक मुख्य अर्थ है लेकिन इसके कई लागूकरण हो सकते हैं.
One view says this.
एक विचार तो ये कहता है.
Paul is talking about the completed word of God.
पौलुस बात कर रहा है जब बाइबल पूरी हो जाएगी उसकी बात कर रहा है जब नया नियम पूरा लिख जाएगा.
No longer need any spoken prophecies as extra revelation.
और जब बाइबल लिख जाएगी पूरी जब तो मतलब बाइबल मतलब सिद्ध हो जाएगा वचन तो फिर हमें और भी अधिक प्रकाशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन पूरा हो गया उस समय.
Now, if that is your interpretation,
और अगर आप ये मानते हैं इस बात को,
do you know what that means?
तो आपको मालूम है इसका मतलब क्या है?
Now you have the completed word of God.
अब आपके पास परमेश्वर का संपूर्ण वचन है.
And you don't know in part, you know fully.
अब आप अधूरा नहीं जानते, आप सब कुछ जान गए अब आप.
Paul and the apostles and the early church only knew in part.
पौलुस और आरंभिक कलीसिया के लोगों को तो केवल अधूरा मालूम था थोड़ा मालूम था पूरा नहीं मालूम था.
You have the perfect word of God.
अब आपके पास तो सिद्ध परमेश्वर के वचन पहुंच गया है.
That means you now know more than Paul did.
और इसका मतलब यह है कि अब आपको पौलुस से भी ज्यादा मालूम है.
Is that true?
क्या ये सत्य है?
You know more than Paul does.
क्या आप पौलुस से ज्यादा जानते हैं? बोलो बोलो हाँ बोलो कोई तो बोले. पौलुस कहता है अब हम देखते हैं और अधूरेपन में देखते हैं और अधूरेपन में समझते हैं.
But when the word of God is complete, now we'll know fully.
लेकिन जब परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा मतलब बाइबल पूरी लिख जाएगी तो हम पूरा देख लेंगे.
हम लोग तो वही पढ़ते हैं आज तक जो पौलुस और उसके बाद को कुछ लिखा हुआ मिला नहीं.
बिल्कुल सही कह रहे हैं मिलेगा भी नहीं अब. सही कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा
है. बात भी नहीं करना
हाँ मतलब ठीक है भैया गलती हो गई.
What is the plain, simple meaning of the passage?
आप समझे हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे. जब आप खंड पढ़ रहे हैं तो यहाँ का साधारण सरल सीधा सीधा मतलब क्या है इस खंड का.
What is the plain understanding that the Corinthians would have understood?
जब कुरिन्थियों के लोग इसको पढ़ रहे होंगे जब उनको मिला है तुरंत तो उनके क्या समझ में आया होगा तुरंत उनको क्या लगा होगा.
Well, the Corinthians have said this.
क्या कुरिन्थियों के लोगों ने ये कहा होगा.
When Paul's talking about the completed word of God.
और पौलुस तो परमेश्वर के वचन के पूरे होने की बात कर रहा है.
It's a shame we're going to die before it completely comes.
अरे बड़ी शर्म की बात है कि इससे पहले कि संपूर्ण वचन पूरा हो हम तो मर जाएंगे.
Because we only know in part.
क्योंकि हम तो केवल अधूरा जानते हैं.
But the future generation will know fully.
और लेकिन बाद की जो युग के लोग हैं वो लोग पूरी तरह से जान जाएंगे पीढ़ी के लोग.
You think that's what they were thinking?
क्या कुरिन्थियों के लोग ये सोच रहे होंगे.
Of course that's not what they were thinking.
हमको मालूम है कि वो लोग ऐसा नहीं सोच रहे होंगे.
What were they thinking?
तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे.
The future restoration of all things.
अंत में भविष्य में हर एक चीजों का पुनर्स्थापना होना जो परमेश्वर ने निर्णय करके रखा है.
That's the purpose.
वो है सिद्ध एक दिन आने वाला है.
And don't drag James into this.
और यहाँ पे जबरदस्ती याकूब को घसीटे मत ले आइएगा.
What does James say?
याकूब क्या कहता है. और वो जो परमेश्वर की व्यवस्था में देखता है वो परमेश्वर के संपूर्ण स्वतंत्रता की व्यवस्था में देखता है. और याकूब जो परमेश्वर के वचन को सिद्ध करके वर्णन करता है और वही शब्द है यहाँ पे.
That must mean Paul is talking about the word of God.
इसका मतलब पौलुस परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहा होगा.
That's an inappropriate use of scripture interpreting scripture.
लेकिन ये गलत तरीका है परमेश्वर के वचन को उपयोग करना परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए.
You understand what we're saying?
हमारी बात समझे हम क्या कह रहे हैं.
Most conservative commentators believe this.
अधिकांश conservative commentators ये मानते हैं.
That Paul is speaking concerning the final future perfect state.
कि पौलुस अंतिम परिपूर्ण सिद्ध स्थिति के बारे में बातचीत कर रहा है.
Let me ask you this question.
तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ.
Can God heal today?
क्या परमेश्वर आज चंगा कर सकता है?
Yes.
Can God heal supernaturally today?
क्या परमेश्वर आज अलौकिक तरीके से चंगा कर सकता है?
Yes.
He said he can do everything.
That's a good point.
ये बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं. सही कह रहे हैं.
Third question.
तीसरा प्रश्न.
Does God always heal everyone?
क्या परमेश्वर हमेशा हर एक जन को चंगा करता है?
Is God sovereign in who and how and when He heals?
क्या परमेश्वर इस बात में सार्वभौमिक है कि किसको कब कैसे चंगा करेगा?
All right. Here's the last question.
तो इसलिए आखिरी प्रश्न है आपके लिए.
Does God's sovereignty give some men specifically a gift of healing?
क्या परमेश्वर सार्वभौमिक सार्वभौमिकता में होकर के कुछ लोगों को चंगाई का वरदान देता है? सार्वभौमिकता से अपनी इच्छा से देता है.
Another question.
Is that Benny Hinn? एक और प्रश्न.
Do you know anybody that appears on TV in India that has an authentic biblical spirit-given gift of healing?
अब एक और प्रश्न. क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो टीवी पे आता है जिसके पास असली वास्तविक परमेश्वर की ओर से दिया गया अलौकिक वरदान है चंगाई का? असली असली नकली नहीं. फर्जी वाला नहीं. झूठा नहीं. ढोंगी नहीं. पाखंड नहीं. असली वास्तव में. वास्तव में.
I'm talking about the kind of healing we see in the Bible.
हम उस तरह की चंगाई की बात करें जो नए नियम में हमको दिखाई देता है परमेश्वर के वचन में दिखाई देता है उस तरह की चंगाई.
Some men say that I can heal your leg and make it one inch longer.
कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तुम्हारे पैरों को चंगा कर सकते हैं और एक इंच लंबा भी कर सकते हैं.
I have the gift of healing your stomach ulcer.
और एक आदमी कहता है दूसरा आदमी कहता है कि हम तुम्हारे पेट के अंदर जो छिपा हुआ अल्सर है उसको ठीक कर सकता हूँ मैं.
How do you know they're healed?
आपको कैसे मालूम कि वो लोग चंगे हो गए पेट के अंदर? ध्यान सुनिए इस बात को.
There was healing in the New Testament.
जब नए नियम में चंगाई होती थी
Everybody knew it.
सबको पता चल जाता था तुरंत. Then how do we know about the ulcers in the stomach?
How do we know what?
About the ulcers in the stomach. जब आपका अल्सर ठीक हो जाता है तो आपको बेहतर महसूस होने लगता है पहले से.
Is it permissible for the Christian to go to the doctor and take medicine?
क्या मसीह लोगों को अनुमति है कि वो डॉक्टर के पास जाएं और उनसे दवाई लेके खाएं? सही में?
If a person goes to the doctor and takes medicine, is that a lack of faith?
अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और दवाई लेता है क्या इसका ये मतलब है उसका विश्वास नहीं है? उसका विश्वास कम है? उसका विश्वास कम है इसलिए तो डॉक्टर के पास गए तभी तो दवाई खा रहा है?
Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
I have two friends of mine.
मेरे दो दोस्त हैं मेरे पास. कई दोस्तों में से दो दोस्तों की बात करूं मैं.
About 25 years ago.
और लगभग 25 साल पहले की बात है.
They both got cancer.
उन दोनों को कैंसर हो गया.
One of them believed God was going to heal him.
एक दोस्त ने को ये विश्वास, एक दोस्त ने ये कहा कि उसे विश्वास है प्रभु उसको चंगा करेगा. वो डॉक्टर के पास नहीं गया, उसने दवाई नहीं ली, उसने प्रार्थना किया, लोगों ने अपने हाथ रखे उसके ऊपर और उसने प्राकृतिक औषधियां ली.
He is now in heaven.
और अब वो स्वर्ग में है.
Another friend of mine,
एक और दोस्त है मेरा,
had the same cancer.
उसके पास भी वही कैंसर हुआ उसको भी.
As soon as he heard it,
जैसे उसने सुना,
he prayed.
उसने प्रार्थना किया,
and he went immediately to the doctor.
और वो तुरंत डॉक्टर के पास भी गया,
and he took medicine.
और उसने दवाई लिया,
had operation.
ऑपरेशन हुआ उसका,
and he's 85 years old.
और वो 85 साल का है अभी. Yes,
hallelujah.
Listen carefully.
God can heal.
परमेश्वर चंगा कर सकता है.
God does heal.
परमेश्वर अभी भी चंगा करता है.
And he heals supernaturally and powerfully.
और वो सामर्थ्य के साथ अलौकिक तरीके से भी चंगा करता है.
But he heals according to his sovereign will.
लेकिन वो अपने सार्वभौमिक इच्छा के अनुसार चंगा करता है.
Sometimes he heals. Sometimes he does not.
कभी कभी वो चंगा करता है, कभी कभी वो चंगा नहीं करता है.
God may give someone a gift of healing and then may take it away.
और परमेश्वर कुछ लोगों को चंगा करने का वरदान दे सकता है कुछ समय के लिए और फिर वो वापस भी ले सकता है उनसे.
What is the ordinary pattern and method that the sick saint is to use when they need healing?
लेकिन जब जब संतों को, जब विश्वासियों को चंगाई की आवश्यकता होती, जरूरत होती, तो कौन सा सामान्य तरीका है, प्रणाली है, कौन सी, क्या उनको करना चाहिए चंगाई प्राप्त करने के सामान्य तौर पे प्रतिदिन जीवन में?
Of course, your mind ought to immediately go to what book and what verses in the Bible.
तो अगर जब हम ये प्रश्न कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो आपके दिमाग में कौन सा पद आता है, किस स्थल में जाना चाहिए आपको तुरंत?
James chapter 5.
याकूब उसका पांचवा अध्याय.
Let's look at it.
आइए उसको देखें हम लोग.
Very simple.
बहुत साधारण बात है.
James 5.
याकूब 5.
Verse 13.
उसका 13 पद.
Is anyone among you suffering?
क्या तुम्हारे बीच में कोई परेशान है?
Then he must pray.
तो उसको प्रार्थना करना चाहिए.
If anyone is among you cheerful?
कोई तुम्हारे बीच में खुश है?
He is to sing praises.
उसको भजन के गीत गाने चाहिए.
Verse 14.
14 पद.
If anyone among you is sick?
क्या तुम्हारे बीच में कोई बीमार है?
He should immediately get in his car and drive to the nearest healing crusade.
और अगर तुम्हारे बीच में कोई बीमार है तो उसको तुरंत गाड़ी में बैठना चाहिए और पास में चंगाई की सभा में जाना चाहिए.
That's what James said.
क्या ये यहाँ पे याकूब कह रहा है?
What does he say?
लेकिन याकूब क्या कह रहा है 14 पद में?
He calls for the elders of the church.
वो कह रहा है कि अपनी कलीसिया के प्राचीनों को बुला.
Let them pray over him, anointing him with oil.
और उसकी कलीसिया के लोग, उसके लिए प्राचीन लोग उसके लिए प्रार्थना करें और तेल से उसको अभिषेक करें.
And the prayer of faith will, where is it? Offer, restore the one who is sick, and the Lord will raise him up.
और यहाँ पे 15 पद में, और रोगी चंगा हो जाएगा, प्रभु से खड़ा करेगा.
If he's forgiven, committed sins, they will be forgiven him.
यदि उसने पाप किए तो वे क्षमा हो जाएंगे.
Now is all sickness directly related to our own commitment of a sin?
हमने आपसे पहले भी बोला ना, हमने आपसे पूछा है, क्या हमारे सारे, हमारी सारी बीमारियां, हमारी जो भी बीमारियां हैं, क्या वो हमारे पापों की वजह से होती हैं? क्या हमारी सारी बीमारियां क्या हमारे पापों की वजह से होती हैं?
Does God sometimes permit, appoint, or allow physical sickness in the life of His own children?
क्या परमेश्वर कभी अपने बच्चों के जीवन में अनुमति देता है, या होने देता है, या बीमारी को आने देता है कि नहीं करता है प्रभु?
Do men that supposedly have the gift of healing, are they able to turn it on or turn it off anytime they want to?
What thing? The ability to heal.
Yeah, their ability to heal.
Okay.
Do they turn it on or off?
जो जिन लोगों को परमेश्वर ने वरदान दिया है चंगाई का, क्या वो अपनी मर्जी से जब वो चाहें चंगा कर सकते हैं, जब वो चाहें चंगा नहीं कर सकते हैं क्या वो?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
healing is under the sovereign direction of God.
जो चंगाई का कार्य है वो परमेश्वर के सार्वभौमिक निर्देश के अंतर्गत होता है.
You remember what Paul said in 2 Corinthians chapter 12.
आपको याद है पॉलस ने दूसरे कुरिन्थियों 12 अध्याय में क्या कहा था?
He said, I've been caught up in the third heavens and I heard things of which it is not permitted a man to speak.
पॉलस ने कहा कि मैं तीसरे स्वर्ग में उठा ले गया और मैंने ऐसी बातें सुनी जिसकी लोगों को बोलने की अनुमति नहीं है.
Because of the surpassing greatness of the revelation, God gave me a thorn in the flesh.
और क्योंकि प्रकाशनों की बहुतायत के वजह से परमेश्वर ने मेरे देह में एक कांटा चुभा दिया.
He said, "What is a messenger of Satan?"
लेकिन कांटा चुभाया गया एक शैतान के दूत के द्वारा.
Apparently, God in His sovereignty permitted Satan to inflict some sickness on Paul.
ऐसा प्रतीत होता है परमेश्वर ने अपनी सार्वभौमिकता में होकर के शैतान को अनुमति दे दी कि पॉल उसके शरीर में कोई बीमारी डाल दे.
Now, where do we have another example of that?
और उस तरह के कहां आप एक और उदाहरण कहां पाते हैं हम इस तरह का? अय्यूब के जीवन में.
Had Job sinned?
क्या अय्यूब ने पाप किया था?
Had Paul sinned?
क्या पॉलस ने पाप किया था?
But God appointed sickness in the life of Paul to keep him humble and to further sanctify him.
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में बीमारी को होने दिया ताकि पौलुस और भी अधिक पवित्रता में बढ़ता चला जाए, यीशु मसीह की जैसा बनता चला जाए.
Did Paul pray for healing?
क्या पौलुस ने चंगाई के लिए प्रार्थना किया? क्या पौलुस ने चंगाई के लिए प्रार्थना किया? कितनी बार?
तीन बार. Did God heal?
क्या परमेश्वर ने चंगा किया?
Paul had the gift of healing.
क्या पॉलस के पास चंगा करने का वरदान था कि नहीं था?
He couldn't heal himself.
वो खुद को ही चंगा नहीं कर पाया.
Why?
क्यों?
Because God had a purpose for physical sickness in his life.
क्योंकि परमेश्वर के पास एक उद्देश्य था उसके जीवन में शारीरिक बीमारी क्यों लेकर के.
Now, all sickness in our life is not a result of our personal sin.
हमारे जीवन में सारी बीमारियां हमारे व्यक्तिगत पापों की वजह से नहीं होती हैं.
All sickness in our life is under the sovereign appointments and superintending of God for a particular purpose.
लेकिन सारी बीमारियां हमारे शरीर में परमेश्वर के सार्वभौमिक योजना के अंतर्गत उसके निर्देशन में होकर के एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आती है हमारे जीवन में.
When we talk about how God disciplines his children,
जब हम बात करते हैं कैसे परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासित करता है.
There are two kinds of discipline.
दो तरह के अनुशासन होते हैं परमेश्वर के बच्चों में.
Discipline.
एक होता है सुधारने वाला अनुशासन. जब हम पाप करते हैं तो वो हमको अनुशासित करता है.
There is instructive discipline.
लेकिन एक दूसरा है निर्देशात्मक अनुशासन.
Sanctifying discipline.
वो है पवित्रीकरण का अनुशासन.
Not because we've sinned,
इसलिए नहीं क्योंकि हमने पाप किया है.
God wants to further purify us into the image of his son.
लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमको और भी अधिक शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है और यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है.
And sometimes he uses sickness to further purify us.
और कभी कभी वो बीमारी का उपयोग करता है हमको और अधिक आगे शुद्ध करने के लिए.
What did the psalmist say?
वो भजनकार क्या कहता है? भजन 119 में.
For I was afflicted, I went astray, but now I keep your law.
और इससे पहले कि मुझ पे दुर्घटना जो बीमारी आई उससे पहले मैं भटक रहा था लेकिन अब मैं आपके व्यवस्था का पालन कर रहा हूँ.
Paul said it was given to me a thorn in the flesh to keep me from exalting myself.
और पौलुस कहता कि मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया ताकि मैं घमंड ना करूं.
Now what was Paul's thorn in the flesh?
और पौलुस के शरीर में कौन सा कांटा चुभा था?
It was physical.
वो शारीरिक था.
What was it?
क्या था वो? हाँ जी. शैतान खुद आगे घुस गया था.
What was the illness?
बीमारी क्या थी उसके? हैं? उसकी आंख खराब थी. पेट की समस्या थी.
We're not sure.
हमको नहीं मालूम.
So listen carefully.
तो ध्यान से सुनिए बात को.
When the Bible doesn't clearly say,
जब वचन सफाई से नहीं बताता कोई बात को,
you don't stand up and preach,
तो आप खड़े होकर प्रचार नहीं करते हैं.
Well, Paul was blind in his eyes.
पौलुस अपनी आंखों में अंधा हो गया था.
No.
नहीं.
We do not go beyond what the scripture says.
जो वचन कहता है साफ साफ उसके पीछे हम नहीं आएंगे, उसके बाद में नहीं आएंगे.
There may be some hints.
हो सकता है कुछ निशानियों के कुछ चिन्ह होंगे.
What did Paul say? I believe to the Galatians.
और पौलुस गलतियों से क्या कहता है?
If you were willing, you would have taken after eyes and given it to me.
तो पौलुस कहता है गलतियों से कि अगर तुम हमको मालूम है कि तुम अपनी आंख निकाल के भी हमको दे रहे थे अपनी आंख.
But that is not clear.
लेकिन उसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि आंख की बीमारी ये स्पष्ट नहीं है.
What did Paul tell Timothy?
पौलुस ने तिमोथी से क्या कहा?
Timothy had bad stomach problems.
तिमोथी का पेट बड़ा खराब रहता था. उसने क्या कहा तिमोथी से?
Come on over here and I'll heal you.
तुम यहाँ पे आओ मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा.
What did he tell him to do?
पौलुस ने तिमोथी से क्या कहा? राजकुमार भी कितने खुश हो गए.
All right, let me ask you another question.
अपने पेट में थोड़ी थोड़ी पी लिया करो. एक और प्रश्न.
Is it permissible for the Christian to drink wine?
अच्छा एक और प्रश्न. क्या मसीहों को अनुमति है कि वो लोग दाखरस पी सकते हैं? थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं. हाँ जी. He's asking what is wine.
If the wine was not real wine, alcoholic and fermented, it would have not done anything to Timothy's stomach.
अगर जिस दाखरस की बात यहाँ पे की जा रही है तिमोथियस के, अगर वो फर्मेंटेड क्या बोलते हैं, सड़ी हुई नहीं थी ये, मतलब है ना, पुराना नहीं, मतलब रख के जब सरका टाइप का बन जाता, अगर वो नहीं था, मतलब उसे कुछ तेज नहीं था, तो फिर फायदा क्या होगा उसके पेट में जाकर के?
When Jesus turned water into wine at the wedding of Cana, what did they say? This is some of the best grape juice I've ever had.
जब यीशु मसीह ने काने के विवाह में दाख मधु बनाया, दाखरस जो भी आपको बोलना चाहिए, दाख का कुछ बनाया, तो लोगों ने कहा आज से इससे बढ़िया गन्ने का रस हमने कभी पिया नहीं है. क्या लोगों ने ये कहा? अंगूर का रस इतना बढ़िया था हमने कभी पिया नहीं है.
What did he say?
लेकिन लोगों ने क्या कहा वहाँ पे?
You say the best wine to last.
उन्होंने कहा जो बढ़िया वाला दाखरस तो उन्हें बात तक बचा के रखा था. कल
I want you to answer several questions.
मैं चाहता हूँ कि आप कई प्रश्नों को उत्तर दीजिए.
Write them down right now.
लिख लीजिए आप इन प्रश्नों को.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
We're talking about Bible interpretation.
हम बात कर रहे हैं बाइबल के व्याख्या की.
Number one.
पहली बात.
Is it permissible for a Christian to seek a divorce?
क्या एक मसीही के लिए अनुमति है कि वो तलाक करें?
Number two.
दूसरी बात.
Is it permissible for a Christian to drink wine?
क्या एक मसीह को अनुमति, लिखिए क्या एक मसीह को अनुमति है दाखरस या दाख मधु पीने के लिए?
Number three.
तीसरी बात.
Is it permissible sometime for a Christian due to health reasons to have an abortion?
क्या मसीहों को अनुमति है स्वास्थ्य के कारण गर्भपात कराने के लिए?
Number four.
चौथी बात.
Is it permissible sometimes to protect others to tell a true lie?
क्या मसीहों को अनुमति है कि दूसरों को बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए झूठ बोलना?
Number five.
पांचवी बात.
Is it permissible for a Christian to legally sue others?
क्या मसीहों को अनुमति है कि दूसरों के प्रति वो लोग वो करें, केस करें, मुकदमा दायर करें?
Number six.
छठी बात.
Is it permissible for a Hindu or Muslim convert to Christianity to return to the temple of the mosque?
क्या एक हिंदू या मुसलमान पृष्ठभूमि के विश्वासी को अनुमति है कि वो मस्जिद जाए और मंदिर जाए?
Number seven.
सातवीं बात.
Is it permissible for a Hindu convert to Christianity to eat beef?
क्या एक हिंदू पृष्ठभूमि के हिंदू पृष्ठभूमि के आए हुए आदमी को अनुमति है कि वो बड़े का मांस खाए?
We're talking about interpreting difficult issues in the Church of God.
हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर की कलीसिया में कठिन विषयों पे बात करने के बारे में.
So I want you to answer those questions from the Word of God.
और मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन में से इन बातों के बारे में उत्तर दें.
And show me from the Word of God your answer.
और आप परमेश्वर के वचन में से हमको उत्तर दें, दिखाइए इन उत्तरों को.
We're talking about proper interpretation of the Word of God.
हम परमेश्वर के वचन की सही व्याख्यान के बारे में बातचीत कर रहे हैं.
One last verse.
आखिरी पद.
Second. Timothy.
Dusra Timothy.
Second Timothy and chapter 4.
Dusra Timothy chapter 4.
Look at verse 20.
Bishwapad.
We've looked at it before.
पहले भी देख चुके हम लोग यहाँ पे.
What does Paul say?
यहाँ पे पॉलस क्या कह रहा है?
Erastus remained at Corinth.
दूसरे तिमोथी उसके चौथा अध्याय के बीसवें वचन में पॉलस क्या कहता है? Erastus कोरिंथ में रह गया.
Trophimus, I left sick at Miletus.
और मैं त्रिफिमस को मिलेतुस में बीमार छोड़ आया हूँ.
Why didn't he heal?
और पॉलस ने वहाँ पे उसको चंगा क्यों नहीं कर दिया?
Why didn't he heal him?
पौलुस ने क्यों नहीं उसको चंगा किया और वहां पे चौथे पद में चौथे अध्याय के बीसवें पद में त्रिफिमस को मिलेतुस में छोड़ दिया उसने उसको बीमारी छोड़ दिया.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए बात को.
God can and does heal.
परमेश्वर चंगा करता है और कर सकता है.
He can sovereignly and supernaturally heal.
वो सार्वभौमिक तौर से और अलौकिक तरीके से कर सकता है चंगा.
He is sovereign over who and when and how he heals.
लेकिन वो इस बात में भी सार्वभौमिक है कि वो किसको कब कैसे चंगा करेगा.
We certainly can pray for healing.
हम निश्चित तौर पे चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं.
Let me ask you a question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं.
You have a stomach ache.
आपके पेट दर्द होता है.
You go to the doctor.
आप डॉक्टर के पास जाते हैं.
He takes an X-ray.
वो एक्सरे करता है.
He says you got stomach cancer.
वो कहता है कि तुम्हारे पेट में कैंसर है.
All over your stomach.
वो तुम्हारे पूरे पेट में है.
Spread to your whole body.
और तुम्हारे संपूर्ण शरीर में फैल गया है.
You're going to die in 6 weeks.
तुम 6 हफ्ते में मर जाओगे.
What would be the first thing you ask God in prayer?
सबसे पहली चीज आप क्या मांगेंगे प्रभु से प्रार्थना में? Forgiveness of my sins.
How do you know that's a result of your sin?
आपको कैसे मालूम कि वो पापों के कारण आपके हो रहा है बीमारी?
You don't know that.
आपको नहीं मालूम.
What's the first thing you would ask God?
सबसे पहली चीज क्या मांगेंगे आप प्रभु से जो आपको पता लगे कि 6 हफ्ते में आप मरने वाले हैं? हाँ जी.
What do most people do?
अधिकांश लोग क्या करते हैं ऐसे समय में?
What do they do?
क्या करते हैं ऐसे समय में?
They get on the phone.
फोन पे चल जाते हैं.
They call every Christian.
सारे क्रिश्चियन को फोन करते हैं.
I got cancer.
कैंसर हो गया मुझे.
I'm gonna die in 6 weeks.
6 हफ्ते में मरने वालों में.
Pray for a healing.
चंगाई के लिए प्रार्थना करो.
And what's the first thing you pray?
और सबसे पहली प्रार्थना क्या करनी चाहिए?
Oh Lord.
हे प्रभु.
Heal me.
मुझे चंगा करिए. ये प्रार्थना करते हैं लोग.
Is God sovereign over sickness?
क्या परमेश्वर बीमारी के ऊपर सार्वभौमिक है?
Then what's the first thing we should pray?
तो अगर परमेश्वर बीमारी के ऊपर सार्वभौमिक और हमको मालूम 6 हफ्ते में मारने वाले तो सबसे पहली प्रार्थना हमें क्या करनी चाहिए? If it's your will, heal us, your will be done.
There's another prayer that should be asked before that.
एक और प्रार्थना है जो उससे पहले की जानी चाहिए.
What is it?
कौन सी हो? हाँ जी.
This is what you ought to pray.
ये प्रार्थना करनी चाहिए आपको.
Lord, my first desire.
प्रभु जी मेरी पहली इच्छा ये है.
My first prayer.
मेरी पहली प्रार्थना ये है.
Is that whatever happens to me?
कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझको.
That you will be glorified.
कि आपको महिमा मिलेगी.
That my life or in my death.
मेरे जीवन में और मेरी मृत्यु में.
I want you to be glorified.
मैं चाहता हूँ कि आपको महिमा मिले.
If that means my death.
और अगर इसका मतलब यह है कि मेरी मृत्यु हो.
I want to die well.
मैं अच्छी तरह से मरना चाहता हूँ.
I want to die well for your glory.
मैं आपकी महिमा के लिए अच्छी तरह से मरना चाहता हूँ.
Jesus had risen from the dead.
यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा.
He comes to Peter and the apostles.
वो पत्रस और प्रेरितों के पास आता है.
And he corrects Peter.
और वो पत्रस से कहता है.
And he says, when you are restored, strengthen your brethren.
और वो कहता है कि जब तुमको पुनः स्थापित किया जाएगा तो अपने भाइयों को मजबूत करो.
Peter looks around and sees John.
और पत्रस अगल बगल देखता है और यूहन्ना को देखता है.
He said, what about him?
और वो कहता है इसका क्या करेंगे आप?
He said, you don't worry about him, you follow me.
और उसने कहा कि तुम पत्रस यूहन्ना की चिंता मत करो तुम मेरे पीछे चलो.
And he said, Peter, I tell you, it's going to come a day when men bind you hand and foot and they're going to take you to a place you do not want to go.
और यीशु मसीह ने पतरस कहा, पतरस एक दिन आने वाला है जब लोग तुम्हारे हाथों और पैरों को बांध देंगे और तुम्हें ऐसी जगह लेकर के जाएंगे जहां तुम जाना नहीं मानते हो।
This he signified by what manner of death he would glorify God.
और ऐसा कहने के द्वारा यीशु मसीह ने दिखाया कि किस तरह से पतरस अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर को महिमान्वित करेगा।
Did you hear that?
क्या आपने ध्यान से सुना इस बात को?
By his death he would glorify God.
अपनी मृत्यु के द्वारा वो परमेश्वर को महिमान्वित करेगा।
Paul said whether by life or death that Christ be glorified in my body.
और पौलुस कहता है चाहे जीवन में चाहे मृत्यु के द्वारा परमेश्वर मेरे देह से महिमान्वित हो, मेरे जीवन से महिमान्वित हो। और एक आदमी ये कहता है
I know God's gonna heal me.
लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुझे मालूम परमेश्वर चंगा करेगा।
How does that man know?
उस आदमी को कैसे मालूम कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा?
He does not know.
उसको नहीं मालूम कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा नहीं करेगा, हमको नहीं मालूम।
So what's his first prayer?
तो हमारी पहली प्रार्थना क्या होनी चाहिए?
Father,
पिताजी,
my life or death,
जीवन के द्वारा मृत्यु के द्वारा मैं इस बीमारी में भी आपको मेहमान करना चाहता हूँ। दूसरी बात, अगर ये आपकी इच्छा है
you might be pleased to raise me up,
तो आप मुझे खड़ा करिए,
but I want the spirit of Christ,
लेकिन मैं मसीह की आत्मा को चाहता हूँ।
not my will,
मेरी इच्छा नहीं,
but my will be done,
लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो।
Listen carefully,
ध्यान से सुनिए बात।
God has appointed a You are going to die.
परमेश्वर ने वो दिन निर्धारित करके रखा है जब आप मरेंगे।
Already planned and appointed the manner in which you are going to die.
और परमेश्वर ने पहले से ही निर्धारित करके रखा है किस तरह से, किस तरीके से, किस जगह और कब आप मरेंगे।
And it's usually two main possibilities.
और अक्सर दो संभावनाएं होती मरने की।
Number one,
पहली बात,
suddenly in an accident.
एकदम से किसी एक्सीडेंट में मर जाएंगे।
Number two,
दूसरी बात, धीरे से बीमारी में मरेंगे।
And he has a day appointed for your death.
और परमेश्वर ने आपके मृत्यु का एक दिन निर्धारित करके रखा है।
And every year that day rolls around.
और वो हर साल वो दिन आता रहता है घूम घूम करके।
What's the day?
आज कौन सा दिन है?
September 12.
सितंबर 12.
Maybe somebody in this room is going to die on September 12th.
Oh, हो सकता है इस कमरे में कोई है जो सितंबर 12 के दिन मर जाएगा, चलता बनेगा यहाँ से।
A year from now.
एक साल के अंदर अंदर।
5 years from now.
हो सकता है 5 साल के बाद।
10 years from
now. हो सकता है 10 साल के बाद।
Maybe tonight.
हो सकता है आज की रात। ध्यान से निकालो।
God heals.
परमेश्वर चंगा करते हैं।
In his sovereign will.
अपने सार्वभौमिक इच्छा में होकर के।
Everybody you see on TV.
हर एक लोग को जिनको आप टीवी पे देखते हैं।
Are fake and false.
वो लोग झूठे हैं और धोखेबाज हैं।
Did you hear that?
क्या आपने सुना इस बात को?
Don't allow your people to watch all those false teachers on TV.
अपने लोगों को उन टीवी पे जो प्रचारक लोग आते हैं उनको देखने से मना करिए आप।
It's not always God's will to heal you.
परमेश्वर की हमेशा इच्छा नहीं होती कि वो हमको चंगा करे।
So yes, these things can happen today.
हाँ, ये चीजें आज भी हो सकती हैं।
But no, it's not according to our will.
तो नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है लेकिन ये।
Any question?
आप कोई प्रश्न? Just 4 days ago, a woman used to come to his church, and her husband didn't come to the church. He was unbelieved, but he killed himself just 4 days ago. He committed suicide by hanging himself. He's saying, was it appointed by God?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को।
God in His sovereignty,
परमेश्वर अपनी सार्वभौमिकता में,
sometimes permits men to go on in their sin.
परमेश्वर कई बार अनुमति देता है कि लोग अपने पाप में लगे रहें।
And He does not hinder them from living out the full consequences of their sin.
और परमेश्वर उनको अपने पापों के संपूर्ण परिणाम में जीने से नहीं रोकता है।
So according to the revealed will of God, nobody.
परमेश्वर के प्रकट किए गए इच्छा के अनुसार किसी भी जन को अपने आप को नहीं मारना चाहिए जान से. परमेश्वर ने जो अपनी इच्छा प्रकट की है वो ये है कि तुम किसी को नहीं, तुम्हें तू हत्या ना करना, ये परमेश्वर की इच्छा है. और उस व्यक्ति ने परमेश्वर की जो इच्छा है कि तू हत्या ना करना, उसका भी उल्लंघन किया उसने. लेकिन परमेश्वर की विचित्र सार्वभौमिकता में होकर के परमेश्वर अपने विचित्र सार्वभौमिकता के अंतर्गत लोगों को अनुमति देता है कि वो अपने पाप के परिणाम में बने रहे, लगे रहे और चरम स्थिति तक पहुंच जाए. और उसी तरह से यहूदा भी बाहर गया और यहूदा ने अपने आप को फांसी लगा के मार लिया. और पत्रस ने कहा कि हमें किसी को चुनना चाहिए जो यहूदा की जगह ले सके, क्योंकि यहूदा उस मार्ग पे चला गया जो उसके लिए निर्धारित किया गया था.
So you have God's secret will,
तो परमेश्वर की एक गुप्त इच्छा है और परमेश्वर की प्रकट की गई इच्छा है. जब एक व्यक्ति अपने आप को मार देता जानते तो उसने परमेश्वर की जो प्रकट की गई इच्छा है उसका उल्लंघन किया.
God in his sovereignty has permitted that man to go through the full extent of his sin.
लेकिन परमेश्वर ने अपनी सार्वभौमिकता में, विचित्र सार्वभौमिकता में, उस व्यक्ति को अपने खुद के पाप में हो करके इस कदम को उठाने की अनुमति दे दी. तो उसका उत्तर है नहीं, और उसका उत्तर है हाँ भी. ये एक बड़ा ही रहस्य की बात है. हाँ जी,
प्रभु यीशु मसीह ने सूखने के द्वारा गूंगे को जो गोली दी और अंधे को आंखें दी, इसका क्या रहस्य है?
इनके कमरे में जाइए ना, बताएंगे आप. बुलाया तो था, आप गए
नहीं.
He wants to know about the answer for that. Why did Jesus heal by spitting? I said, just go to his room and he'll tell you.
Here is my answer.
मेरा उत्तर ये
है. And you've got to be able sometimes to give this answer.
और कभी कभी आपको उत्तर देना चाहिए.
I don't know.
मुझे नहीं मालूम.
Do you?
क्या आपको मालूम है इसका उत्तर?
Preachers must be willing to say those words.
जो प्रचारक लोग हैं, इन हम लोग को ये शब्द बोलने के तैयार होना चाहिए लोगों के सामने.
The scripture is not clear.
जब परमेश्वर वचन साफ नहीं है इस बारे में,
you can say this.
तो आप ये कह सकते हैं.
The Bible doesn't say specifically why he spit and put his spit on his tongue.
परमेश्वर का वचन हमको नहीं बताता सफाई से क्यों करके यीशु मसीह ने थूका और फिर उस थूक को उठा करके उसके जवान पे लगाया. क्यों लगाया हमको नहीं मालूम.
Men have a lot of different opinions.
और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे विचार हैं इस बातों को लेकर के.
I don't know.
लेकिन मुझको नहीं मालूम.
And listen carefully.
और भाई ध्यान सुनिए इस बात का.
When the scripture is silent,
जब वचन शांत होता है इन विषयों पे,
you better be silent.
तो आप भी शांत हो जाइए इस पर.
But when the scripture speaks,
लेकिन जब वचन बोलेगा,
you better open your mouth.
तो आप भी अपने मुंह को खोलिए तब.
Can you say those words?
क्या आपको बोलना आता है ये शब्द? मुझे नहीं मालूम.
You better learn to say those words.
आप ये शब्द बोलना सीख लीजिए.
Why?
क्यों?
Because people ask hard questions.
क्योंकि लोग कठिन प्रश्न पूछेंगे आपसे.
If you stood at the grave of the funeral of a little baby.
अगर आप किसी एक छोटे बच्चे के मिट्टी में उसके कब्र के पास खड़े हुए, किसी छोटे बच्चे की मिट्टी मृत्यु में उसके कब्र के पास खड़े हैं अगर छोटे बच्चे के,
and that mother comes to you crying.
और उसकी माँ आपके पास आते रोते हुए,
you're the preacher.
और आप प्रचारक हैं.
And she said, preacher.
और आपसे उसकी माँ आपसे कहती प्रचारक.
And I've had a woman do this to me.
और एक औरत ने मेरे को किया था ऐसे.
Where is my baby?
मेरा बच्चा कहाँ है?
Where is my baby?
मेरा बच्चा कहाँ है?
Where is my baby?
मेरा बच्चा कहाँ है?
What would you tell?
आप क्या बोलेंगे उससे वहाँ पे उस समय?
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
You better know your Bible.
आप अपनी बाइबल को जान जाइए अच्छी तरह से.
And you better be sensitive to the needs of people.
और आप लोगों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील होना सीखें.
You say this.
अगर आप ये कहेंगे.
Well, madam, there's several different opinions on that point.
बहन जी इस विषय में लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं. और मैं अब आपको बहन जी बताता हूँ कुछ विचार. और आप चुन लीजिए आप कौन से विचार से सहमत हैं. क्या आप ऐसा करेंगे. एक सच्चा प्रचारक वो उसको संतावना देगा उस समय कि परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर बुद्धिमान है, परमेश्वर सार्वभौमिक है, परमेश्वर प्रेमी है, और वो जानता है आपका बच्चा कहाँ है. ध्यान से सुनिए इस बात को. लोगों के पास समस्याएं हैं, उन लोगों की आवश्यकताएं हैं, और आपको इस पुस्तक को खोलना आना चाहिए और सही तरीके से परमेश्वर के वचन का व्याख्या करना आना चाहिए और उनकी सहायता करना आना चाहिए. लेकिन अगर आप सही से व्याख्या नहीं करेंगे तो फिर आप उनको गलत समझ की ओर लेके जाएंगे. तो आपके प्रश्न का उत्तर, परमेश्वर चंगा करता है, वो आज भी चंगा करता है, वो अभी भी सामर्थ्य चंगा कर सकता है, वो अपनी सार्वभौमिकता में चंगा कर सकता
है,
और शायद वो कुछ लोगों को चंगाई का वरदान भी देता है. मैं कुछ लोग जानता हूँ चीन देश में, पुरुष लोग.
If you care to accept also a few women.
और परमेश्वर मैं चीन देश में जानता हूँ कुछ लोगों को, कुछ पुरुषों, कुछ महिलाओं को जिनको प्रभु ने वरदान दिया है.
I've laid my hands on a lot of people in China.
मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर चीन देश में अपने हाथ को रखा है.
But the percentage of those that have been healed is not very high.
लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर हाथ रखा चंगाई के लिए, लेकिन जो लोग चंगा हुए उनका प्रतिशत बहुत कम है.
God is sovereign.
परमेश्वर सार्वभौमिक है.
Let's pray.
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे.